नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हैरियट लर्नर की पुस्तक द डांस ऑफ एंगर अंतरंग और पारिवारिक रिश्तों में क्रोध की भूमिका पर केंद्रित मनोवैज्ञानिक स्व सहायता पुस्तक है।
इसका मूल तर्क है कि क्रोध अपने आप में न तो दोष है, न ही केवल नियंत्रित करने योग्य विस्फोट। वह एक संकेत है जो उपेक्षित जरूरतों, टूटी सीमाओं, असमान जिम्मेदारियों या लंबे समय से दबे असंतोष की ओर ध्यान दिला सकता है। लर्नर विशेष रूप से उन सामाजिक अपेक्षाओं की जांच करती हैं जिनके कारण अनेक महिलाएं क्रोध को दबाती हैं, स्वयं पर संदेह करती हैं या उसे ऐसे ढंग से व्यक्त करती हैं जिससे उनकी बात और कमजोर पड़ जाती है। पुस्तक का डांस रूपक बताता है कि विवाद अकेले व्यक्ति की समस्या नहीं होते, बल्कि दो या अधिक लोगों के बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहारों का क्रम होते हैं। इसका उद्देश्य किसी को बदलने की तरकीब देना नहीं, बल्कि पाठक को अपने हिस्से की प्रतिक्रिया, जिम्मेदारी और सीमाएं स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है। इसी बदलाव से रिश्ते का पुराना ढर्रा बदलने की संभावना पैदा होती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, क्रोध को दोष नहीं, संबंधों का महत्वपूर्ण संकेत मानना। लर्नर क्रोध को केवल आक्रामकता, बदतमीजी या नियंत्रण खोने के रूप में देखने से इनकार करती है। उनके अनुसार क्रोध अक्सर यह सूचना देता है कि व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सीमा का उल्लंघन हुआ है, उसकी जरूरत अनसुनी रह गई है या वह अपने मूल्यों के विरुद्ध समझौता कर रहा है। विशेषकर महिलाओं को अक्सर शांत, सहयोगी और सबको खुश रखने वाली भूमिका में ढलने की शिक्षा मिलती है, इसलिए वे क्रोध को अनुचित समझ सकती हैं, अपराध बोध में बदल सकती हैं या उसे अप्रत्यक्ष शिकायत, व्यंग्य और दूरी के रूप में व्यक्त कर सकती हैं। पुस्तक यह भेद स्पष्ट करती है कि भावना का वैध होना और हर प्रतिक्रिया का उपयोगी होना अलग बातें हैं। क्रोध को दबाना समस्या का समाधान नहीं है, पर बिना सोचे फट पड़ना भी दूसरे व्यक्ति को सुनने या व्यवहार बदलने के लिए तैयार नहीं करता। उपयोगी प्रश्न यह है कि क्रोध किस बात की ओर संकेत कर रहा है और व्यक्ति उस सूचना के आधार पर क्या स्पष्ट कदम उठाना चाहता है। इस दृष्टि से क्रोध लक्ष्य नहीं, आत्मज्ञान और ठोस कार्रवाई का प्रारंभिक बिंदु बनता है। पाठक अपनी भावनात्मक तीव्रता के पीछे मौजूद वास्तविक मुद्दे को पहचानना सीखता है, ताकि बातचीत आरोपों की सूची के बजाय जरूरतों, सीमाओं और विकल्पों पर केंद्रित हो सके। दूसरा, डांस का रूपक और दोहराए जाने वाले संबंधी पैटर्न। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार डांस का रूपक है। लर्नर के अनुसार निकट संबंधों में संघर्ष प्रायः एक अनुमानित क्रम में चलता है। एक व्यक्ति दबाव डालता है तो दूसरा पीछे हटता है। एक लगातार समझाता, याद दिलाता या व्यवस्था संभालता है तो दूसरा निष्क्रिय, रक्षात्मक या निर्भर होता जाता है। फिर दोनों अपने व्यवहार को दूसरे की कमी का प्रमाण मानने लगते हैं। इस चक्र में यह पूछना कम उपयोगी है कि पूरी गलती किसकी है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं इस क्रम में कौन सा कदम बार बार दोहरा रहा या रही हो। यह दृष्टि दोषारोपण को समाप्त नहीं करती, विशेषकर गंभीर दुर्व्यवहार या असुरक्षा की स्थितियों में जिम्मेदारी को धुंधला नहीं करना चाहिए। फिर भी सामान्य संबंधी गतिरोधों में यह व्यक्ति को अपनी एजेंसी पहचानने में मदद देती है। लर्नर का केंद्रीय बिंदु यह है कि हम दूसरे को अपने अनुसार बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पीछा करना बंद करता है, अस्पष्ट मांग को स्पष्ट करता है या शांत रहकर सीमा पर कायम रहता है, तो पुराना क्रम पहले की तरह नहीं चल पाता। बदलाव से अस्थायी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अन्य लोग पुराने संतुलन को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। पुस्तक इस असुविधा को विफलता नहीं, नए व्यवहार के स्वाभाविक परिणाम के रूप में समझने का ढांचा देती है। तीसरा, अतिरिक्त जिम्मेदारी और निष्क्रियता के बीच असंतुलन। लर्नर रिश्तों में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने और कम जिम्मेदारी लेने के परस्पर जुड़े पैटर्न पर ध्यान देती हैं। जब एक व्यक्ति हर निर्णय, भावनात्मक देखभाल, आयोजन, समस्या समाधान और संवाद का भार उठा लेता है, तो वह अक्सर खुद को आवश्यक मानने लगता है। पर यही व्यवहार दूसरे व्यक्ति को पीछे हटने, पहल न करने या जिम्मेदारी से बचने की जगह भी दे सकता है। इस असंतुलन का परिणाम थकान, रोष और सम्मान में कमी हो सकता है। पुस्तक अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को केवल उदार पीड़ित के रूप में नहीं देखती। वह पूछती है कि वह किन चिंताओं के कारण नियंत्रण छोड़ नहीं पाता और किस तरह दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता है। इसका अर्थ किसी साथी, परिवारजन या सहकर्मी की वास्तविक गैर जिम्मेदारी को उचित ठहराना नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह पहचानना है कि व्यक्ति अपनी तरफ से उस व्यवस्था को कैसे बनाए रख रहा है। व्यावहारिक बदलाव में कामों को लौटाना, दूसरे को उसके परिणामों का सामना करने देना और बिना लगातार निगरानी के अपेक्षाएं स्पष्ट करना शामिल है। यह प्रक्रिया असहज लग सकती है, क्योंकि पुरानी भूमिका छोड़ने पर व्यक्ति को चिंता, खालीपन या आलोचना महसूस हो सकती है। लर्नर के लिए अधिक संतुलित रिश्ता तभी बनता है जब देखभाल आत्मविलोपन नहीं बनती और जिम्मेदारी वास्तव में संबंधित लोगों के बीच बांटी जाती है। चौथा, सीमाएं स्पष्ट करना और बिना धमकी के अपनी स्थिति पर टिकना। द डांस ऑफ एंगर में सीमा निर्धारित करना केवल किसी को ना कह देने का नाम नहीं है। लर्नर इसे अपनी स्थिति, अपनी जिम्मेदारी और अपनी कार्रवाई को स्पष्ट करने की क्षमता के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रभावी सीमा दूसरे व्यक्ति के चरित्र पर हमला नहीं करती, न ही उसे मजबूर करने वाली धमकी बनती है। वह यह बताती है कि व्यक्ति क्या स्वीकार नहीं करेगा, क्या करेगा और अपने निर्णय के परिणाम को कैसे संभालेगा। उदाहरण के लिए, अस्पष्ट रूप से यह कहना कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते प्रायः बचाव और प्रतिवाद उत्पन्न करता है। इसके बजाय व्यक्ति किसी विशेष व्यवहार, अपनी आवश्यकता और अपने अगले कदम को शांत भाषा में रख सकता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि सीमा की विश्वसनीयता लंबे तर्क से नहीं, लगातार व्यवहार से बनती है। यदि व्यक्ति हर विरोध के बाद अपनी बात वापस ले लेता है तो संबंध का पुराना ढर्रा बना रहता है। साथ ही लर्नर कठोर नियंत्रण और स्पष्टता में अंतर करती है। सीमा का लक्ष्य दूसरे की स्वतंत्रता समाप्त करना नहीं, अपनी भागीदारी की शर्तें तय करना है। यह दृष्टिकोण पाठक को अत्यधिक सफाई देने, अनुमति मांगने और भावनात्मक दबाव में निर्णय बदलने की आदतों पर विचार करने को कहता है। ऐसी स्पष्टता निकटता के विरुद्ध नहीं है, उल्टे वह असंतोष के संचय और अप्रत्यक्ष क्रोध को कम करके अधिक ईमानदार संबंध का आधार बना सकती है। अंत में, परिवार की पुरानी भूमिकाएं, त्रिकोण और परिवर्तन की चिंता। लर्नर वर्तमान क्रोध को केवल वर्तमान घटना का परिणाम नहीं मानती। वह बताती हैं कि बचपन के परिवार में सीखी भूमिकाएं, पुराने नुकसान, भावनात्मक दूरी और अनसुलझे तनाव वयस्क रिश्तों में प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्ति आलोचना के सामने तुरंत चुप हो सकता है, किसी की परेशानी का जिम्मा अनायास उठा सकता है या असहमति को रिश्ते के टूटने के खतरे जैसा महसूस कर सकता है। पुस्तक परिवार के त्रिकोणों पर भी ध्यान देती है जिनमें दो लोगों का तनाव किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संभाला जाता है। मसलन, किसी दंपति का टकराव बच्चे, रिश्तेदार या किसी बाहरी विवाद पर केंद्रित हो सकता है। इससे मूल मुद्दा सीधे संबोधित नहीं होता और तीसरा व्यक्ति अनावश्यक तनाव में आ जाता है। लर्नर का आग्रह है कि पाठक अपने भावनात्मक इतिहास को समझे लेकिन उसे वर्तमान निष्क्रियता का बहाना न बनाए। अतीत को जानने का उपयोग यह चुनने में होना चाहिए कि आज किससे सीधे बात करनी है, किस विवाद में तीसरे को नहीं खींचना है और किस भय के बावजूद अलग ढंग से प्रतिक्रिया देनी है। परिवर्तन अक्सर चिंता जगाता है क्योंकि परिवार और साथी पुराने संतुलन के आदि होते हैं। इसलिए पुस्तक साहस को डर के अभाव के बजाय स्पष्ट और विचारशील कार्रवाई के रूप में रखती है। यह समझ पाठक को तत्काल राहत के लिए पुराने समझौतों में लौटने के बजाय दीर्घकालिक संबंधी बदलाव पर टिके रहने में सहायक होती है। निष्कर्ष में, द डांस ऑफ एंगर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बार बार एक जैसे पारिवारिक, वैवाहिक या निकट संबंधी विवादों में फंस जाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ संभालते हैं फिर भी उनकी जरूरतें नहीं सुनी जाती या जो असहमति व्यक्त करते ही अपराध बोध, भय अथवा तीखी प्रतिक्रिया में चले जाते हैं। पुस्तक का मूल पाठ यह नहीं है कि क्रोध को खुलकर निकाल देना चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि भावना के संदेश को समझकर, अपनी हिस्सेदारी पहचान कर और अपनी कार्रवाई स्पष्ट करके अधिक जिम्मेदार ढंग से संबंधों में उपस्थित हुआ जा सकता है। महिलाओं के सामाजिक अनुभव इसके केंद्र में है, पर अतिरिक्त जिम्मेदारी, दूरी, पीछा करने, निष्क्रियता और सीमा संबंधी इसके विचार किसी भी लिंग के पाठक के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह पुस्तक त्वरित संवाद सूत्रों या केवल शांत रहने की सलाह देने वाली सामान्य स्व सहायता पुस्तकों से अलग है। इसकी विशिष्टता संबंध को एक प्रणाली की तरह देखने में है जहां किसी एक व्यक्ति का बदला हुआ कदम पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह पाठक को दूसरे को नियंत्रित करने का भ्रम नहीं देती। इसका व्यावहारिक लाभ बेहतर आत्मनिरीक्षण, अधिक सीधा संवाद और जिम्मेदार सीमाएं हैं। जिन रिश्तों में हिंसा, धमकी या गंभीर नियंत्रण मौजूद हो, वहां केवल संवाद कौशल पर्याप्त नहीं हो सकते और सुरक्षा तथा पेशेवर सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सामान्य संबंधी गतिरोधों के लिए लर्नर का ढांचा क्रोध को दबाने या विस्फोट में बदलने के बीच एक अधिक विचारशील विकल्प देता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं हैरियट लर्नर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।